They who gave, they who village, and we were taking a tour of life and teachings of Tukaram Maharaj. And of course we had several hundred devotees with us as we were remembering and sharing the memories of Tukaram. So that is inspiring, has become inspiration for this morning's chanting. As I was chanting this morning, I was remembering our visit of Dehu and the life of Tukaram Maharaj.
बताना चाहता हूं कि जो हमने कल आज सुबह की जो तैयारी की है जब करने से पूर्व उसका जो तत्व है मुझे कल की जो तुकाराम महाराज के हमने जो गांव देहू विलेज देहू गांव हम लोग गए थे तुकाराम महाराज के तो जैसे हमने वहां पर देहू गांव में जाकर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया हमने सब जो स्थान थे उन पे जाकर के तुकाराम महाराज के विषय में सुना और उनका जो ध्यान किया उनके विषय में हमने अधिक से अधिक उन स्थानों के विषय में और तुकाराम महाराज की जो वहां पर लीलाएं हुई उसके विषय में जब सुना तो आज सुबह का जो ध्यान के लिए तत्व है जप करते समय मुझे कल के ही इस जो देहू का हमने यात्रा की उससे मुझे प्राप्त हुआ।
हरे हरे this is certainly Lord's arrangement. Lord sends His pure devotees into this world. And then the way they live their life, and all their dealings and their thoughts and acts and all their eating, whatever they do, becomes an inspiration or glaring example for the whole world to follow. Does Vaikuntha exist? Someone may ask that question. Or we all have that question. So yesterday as we were there, we visited the Vaikuntha Viman landing spot, and then we remembered the whole episode how Tukaram boarded that plane, and while leaving, his last word, because he compiles over 4,000 abhangas. The last abhanga he recited, or he compiled and sang, as he sat on the plane. Amijato amachagava amacharama rama ghyava Amijato amochagava. This was his last abhang, wherein he's saying, I'm going back to home. Please accept my Ram Ram, Ram Ram Mandalino, Ram Ram. I'm going. And he went, the aircraft, Vaikuntha Viman departed, and it never returned. Some of those villagers, of course, I'm sure they were thinking that Tukaram would make a few rounds up there. He's going to come to his Amijato Amchagava. His gav is right here. So he's going to return, but They were disappointed. They were waiting and waiting for hours and for days. And Tukaram never returned, as the aircraft never returned. It went back to home, back to Vaikunth or back to Golok. So Lord is giving some proofs like this. You want a proof of Vaikunth or Vaikunth exists and people go back to home? Look, here is life of Tukaram or his departure of Tukaram. He left for Vaikunth. And so hence there is no samadhi of Tukaram also. In Alandi there's a samadhi of Jnaneshwar. But in Dehu there is no samadhi of Tukaram, or anywhere on this planet there is no samadhi of Tukaram. That's another amazing thing. With his own body, his self, he departed. So this is amazing, and amazing evidence of existence of Vaikunth, and how devotees leading a life of devotion, they do go back to home, back to Vaikunth or Golok. Yeah.
तो निश्चित रूप से ये भगवान की व्यवस्था है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं संसार में, और जिस प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त व्यवहार करते हैं, आचार करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, वह वास्तव में एक उदाहरण होता है और अन्य जीवात्मों के अनुकरण करने के लिए। तो कई बार हमारे मन में संदेह आता है कि क्या वैकुंठ है, कौन सा स्थान है जहां पे भगवान रहते हैं। तो जब हम उस स्थान पर गए जहां से तुकाराम महाराज सशरीर वैकुंठ धाम गए थे, तब हमें वहां पर जो उन्होंने 4000 अभंग अपने जीवन काल में लिखे, उसमें से आखिरी अभंग जो वे साक्षात गरुण के ऊपर जब आरूढ़ हुए, जब बैठ गए, तब उन्होंने अपना आखिरी अभंग बोला कि आमी जाओ तो अमचा गावा, अमचा राम राम घ्यावा। मैं अपने गांव जा रहा हूं और आप सबको मेरा राम राम स्वीकार करिए। और इस प्रकार से सबके देखते देखते वे वैकुंठ यान में बैठे और वह वैकुंठ यान वहां से जाने लगा। तो कुछ गांव वालों ने सोचा कि इनका गांव तो यही है, निश्चित रूप से ये कुछ भ्रमण करके आकाश में कुछ सैर सपाटा करके वापस आ जाएंगे। परंतु वह उनका भ्रम था, क्योंकि तुकाराम महाराज तो अपने गांव, अपने वास्तविक घर वापस चले गए थे, और वहां वे घंटों इंतजार करते रहे, दिन इंतजार करते रहे, महीने इंतजार, लेकिन तुकाराम महाराज वापस नहीं आए। तो भगवान इस प्रकार से जो हमारे संदेह होता है कि क्या वैकुंठ है, भगवान का कोई धाम है, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रकार से देते हैं कि अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से। और हमने देखा तुकाराम महाराज सशरीर भगवत धाम गए, देहू में उनकी कोई समाधि नहीं है कि हमें कोई समाधि का दर्शन होता हो। तो वे स्वयं अपने शरीर के साथ वैकुंठ धाम चले गए।
कीर्तनीय सदा हरि तुकाराम महाराज, you always chanted, uttered the holy names of Lord Panduranga, 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 Panduranga. Jai Jai Ram Krishna Hari, Jai Jai Ram Krishna, Jai Jai Ram Krishna Hari, Jai Jai Ram Krishna Hari,
Ram Krishna Hari.
So it was, in fact, difficult for him to stop singing and chanting. For us, it is difficult to chant or utter these names, but For Tukaram, once he started chanting, singing, he would just go on and on and on, and he was unstoppable. So he was always doing as is expected by Gauranga Mahaprabhu. He gave goals to his devotees, Kirtaniya Sadaharis, and Tukaram Maharaj was yet another example of someone who did Kirtaniya Sadahari all the time. Yeah.
Ahari. So Sant Tukaram Maharaj hamesha jap karte rehte the. Pandurang, Pandurang, Jai Jai Ram Krishna Hari, Jai Jai Ram Krishna Hari. इस प्रकार से हमेशा हमेशा वो जप करते थे भगवान के नाम का. तो वास्तव में उनके लिए बहुत ही कठिन होता था जप को रोक पाना, जबकि हम लोगों के लिए अधिकांशतः जप करना बहुत कठिन हो जाता है. तो जब वे जप करते थे, कीर्तन करते थे, तो घंटों नृत्य करते थे, उच्च स्वर में कीर्तन करते थे, और कभी कीर्तन रुकता नहीं था. जैसा गौरांग महाप्रभु चाहते थे कि कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा हरि नाम का जप करते रहे, तो ये तुकाराम महाराज के जीवन से पूर्ण रूप से परिलक्षित था, दिख रहा था कि वे कभी भी नाम का जप छोड़ते नहीं थे.
One morning, he wasn't a gentleman. he came. He was a anti-party. He was offender. He had come to Tukaram's home, and he inquired, "Oh, Tukoba, are you here?" So the family members told him, "No, he would be just now coming. Please hold on, just wait here." So after some time, Tukaram returned. During morning hours, he had gone to the field to take care of his body. As to this, that, and he was just now coming back, and this person who was Vaishnava Aparadhi, Tukaram Aparadhi, when he saw Tukaram returning, he still had lota in his hand, Tukaram's hand. He said, "Did you take bath?" "No, not yet." "And you are chanting, doing Harinam, Kirtan, without taking bath? You're such a fool, you are offender, you don't know the basic rules, how to keep clean and suchi, and then you begin the process of worship or chanting or whatever dharmic activities you perform." So Tukaram said, I'm sorry, it's very difficult to follow, for me to follow this rule that only after I have taken my snan or bath and then I begin my singing or remembering or worshipping, and I can't stop this. This comes automatically." Yeah. Sajjan nahi the. Sajjan nahi the.
Sajjan nahi the.
Durjan.
Apradhi the. Apradhi the Tukaram Maharaj ke. तो वो जब वे घर आए तो उन्होंने इस प्रकार से आवाज लगाई, तुकोबा कहाँ हो तुम? तुम कहाँ गए हो? तो तुकाराम महाराज के घर में किसी ने कहा, "आप बैठो, अभी वो गए हैं, अभी थोड़ी देर में आएंगे." तो जब वो बैठे रहे वहां पर, तब उन्होंने देखा कुछ समय पश्चात जब तुकाराम महाराज वापस आए, तो उनके हाथ में लोटा था और वो शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर आ रहे थे. तब ये जो व्यक्ति थे, जो कि वैष्णव अपराधी थे, तुकाराम अपराधी थे, उन्होंने उस लोटे को देख करके कहा, "क्या तुमने अभी तक स्नान नहीं किया है और तुम नाम का जप कर रहे हो? तुम क्या इतने मूर्ख हो कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि बिना स्नान के बिना शुचि हुए नाम जप नहीं किया जाता, कोई धार्मिक क्रिया नहीं की जाती, तुमको इतना भी नहीं पता कि पहले स्नान आदि करना चाहिए तब हमें धार्मिक अनुष्ठान या क्रियाएं करनी चाहिए। तब तुकाराम महाराज ने कहा कि मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है, ये बहुत कठिन है नाम को छोड़ना, और मुझे पता नहीं चलता है कि स्नान के बिना मैं अपने भगवान का स्मरण नहीं कर सकता या जप नहीं कर सकता या उनके नाम का कीर्तन नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत कठिन है, बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए इस प्रकार से।
तुकाराम महाराज said, you know, I'm not able to stop chanting. It is beyond me. Something within me is just forcing me, dictating me, prompting me to chant, and I just can't stop. If you wish, you could maybe try stopping my chanting. And then this person, the aparadhi, karmakandi, pakhandi, he stepped forward and he closed the, held the lips of Tukaram tight and trying to, so that he doesn't chant. But the chanting did not stop. Like his, it wasn't just his mouth was chanting, Tukaram's whole body was chanting. From all the pores of his body, there was utterance of the holy name of the Lord, and his body was trembling and vibrating, and the singing was on. And so neither Tukaram was able to stop such chanting on his own, and neither any external forces or parties were able to stop that chanting, because in fact the personalities like Tukaram, and of course nobody's body chants, his soul chants. So Tukaram's soul is chanting, and he's chanting and chanting and is never stopping. So this we also heard and remembered how Tukaram Maharaj was always doing this Kirtaniya Sada Hari activity or process. Yeah.
Maharaj ne kaha ki mujhse jap band nahi hota, और ये मेरे वश की बात भी नहीं है कि मेरे भीतर से कुछ होता है कि मैं अनायास बिना किसी प्रयास को किए जप करता रहता हूं। तब उस पाखंडी जो अपराधी था उसने बलपूर्वक तुकाराम महाराज के होठों को बंद करा अपने हाथों से, और उसने जोर से तुकाराम महाराज का एक प्रकार से मुंह बंद करने का प्रयास किया, और तब उसने देखा कि तुकाराम महाराज का पूरे शरीर से हरिनाम जप निकल रहा था, उनके एक एक रोम कूप से हरिनाम का उच्चारण हो रहा था। और तब उसने देखा कि तुकाराम महाराज वास्तव में खाली मुंह से ही जप नहीं कर रहे थे, उनके पूरा शरीर, उनकी आत्मा जप कर रही थी, क्योंकि जो जप करती है वो आत्मा है ना कि ये शरीर है। तो तुकाराम महाराज का पूर्ण जो एक प्रकार से आत्मा है वो हर समय निरंतर जप करती थी। तो ये हमने कल सुना और हमने इस बात का स्मरण किया कि किस प्रकार से तुकाराम महाराज जो बिना कोई प्रयास किए बिना कुछ बल लगाए हरि नाम का निरंतर जप करते रहते थे, जैसा गौरांग महाप्रभु ने कीर्तनीय सदा हरि करने के लिए कहा। तो इसका हम ज्वलंत प्रमाण देख सकते हैं तुकाराम महाराज के रूप में।
Now we also remembered how the same these karmakandis and pakhandis and hypocrites and offenders of the Vaishnava Apradhis and Nama Apradhis, Antukaram was becoming popular, well known, and he was loved by all, and they were not very happy with the name, fame, glory of Tukaram Maharaj. So similar to what they did with Namacharya Srila Haridas Thakur, the prostitute was sent to Tukaram, like it was sent in case of Haridas Thakur. And prostitute tried her best, and she could not succeed. Tukaram was busy, absorbed in his bhajan with his veena in one hand and chipli, some kind of kartal, as you know, and he's absorbed in singing. Jai Jai Ram Krishna Hari, Jai Jai Ram Krishna Hari, Jai Jai Ram Krishna Hari, Jai Jai Ram Krishna. So what could poor prostitute do when his Tukaram is fully absorbed and fully satisfied within chanting the holy name of the Lord? There's no vacancy to be filled in with something external or outside. Is Atmaram, Aptakam, and he's just happy with chanting. And so prostitute did all that she could do. Her dancing and trying to get attention of Tukaram. But she fell. And there was a dialogue at the end. And she surrendered unto Tukaram Maharaj, begged for forgiveness for such offensive attempt to cause his fall down, but there's no way the prostitute could cause his fall down. He is like Achyuta. He is with Achyuta, infallible. He's stuck with Achyuta, the infallible. So it wasn't possible. So it's very similar to what happened with Namacharya Srila Haridas Thakur and the prostitute. That happened not far from here. They who go with Tukaram Maharaj. And that is something we should be contemplating upon, and of course take inspiration just to keep chanting Hare Krishna. And then you could defeat all the forces. You are with Krishna, you're not alone, and then you could become victorious. Yatra Yogeshwaro, Yatra Yogeshwaraha Krishna, like that. Tatra Sri Vijayo, there's a victory and no defeat. Tukaram Maharaj become victorious. And prostitute also became victorious, in a sense. She surrendered unto Tukaram Maharaj, and then she led a glorious life, and then onward. Yeah.
कर्म खांडी होते हैं, पाखंडी होते हैं, वैष्णवों के अपराधी होते हैं, तो इस प्रकार से व्यक्ति का अपराध करते हैं, तो तुकाराम महाराज अत्यंत ख्याति प्राप्त कर रहे थे और सभी जो वहां निवासी थे उनके गांव के सब उनसे बहुत प्रेम किया करते थे। और जिस प्रकार से हमने देखा कि नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के जीवन में हुआ कि जब उनसे बहुत लोग प्रेम करते थे तो कुछ लोगों को उनके प्रति बहुत ईर्ष्या होती थी, इसी प्रकार से तुकाराम महाराज के भी जीवन में हुआ कि उनसे कुछ लोग बहुत ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने एक वैश्या को तुकाराम महाराज को पथ भ्रष्ट करने के लिए भेज दिया। और हमने देखा कि तुकाराम महाराज के पास जो वैश्या आई, जब हमने सुना कि किस प्रकार से तुकाराम महाराज निरंतर कीर्तन कर रहे थे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, और उनके पास उनका तंबूरा था और चिपड़ी थी, चिपड़ी जो करताल की तरह होती है, और उसको बजा बजा कर बहुत अत्यंत भाव के साथ हरि नाम का कीर्तन कर रहे थे और नाच रहे थे। तो वो बेचारी वैश्या वहां क्या करती, वहां बैठी थी वो और अपना कार्य कर रही थी, वो नाच रही थी, कुछ अपने इस प्रकार से उनका ध्यान तोड़ने के लिए प्रयास कर रही थी। परंतु तुकाराम महाराज तो पूर्ण रूप से ध्यानस्थ थे, उनके अंदर तो कोई ऐसा रिक्त स्थान नहीं था जहां पर कि कोई बाह्य वस्तु या कोई बाह्य भाव प्रवेश कर सके। तो इस प्रकार से उनके बीच में और उस वैश्य के बीच में कुछ वार्ता भी हुई और उसने तुकाराम महाराज के समक्ष अपने को पूर्ण रूप से समर्पित किया, वह गिर गई उनके चरणों में। तो तुकाराम महाराज एक प्रकार से अच्युत थे, क्यों? क्योंकि वह भगवान अच्युत के पूर्ण शरणागत थे, इसलिए उन्हें कोई भी संसार का बाह्य शक्ति उनको उनका पतन नहीं कर सकती थी। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के जीवन में हुआ, वैसे हमने कल देहू गांव में संत तुकाराम महाराज के विषय में सुना कि किस प्रकार से उन्हें भी इस प्रकार से माया ने अटैक किया वैश्या के रूप में, और ये यहाँ से कुछ ही दूर देहू गांव में हुआ था। तो हम सब भी माया को पूर्ण रूप से परास्त कर सकते हैं यदि हम हरिनाम में पूर्ण शरणागति लेते हैं, फिर हमारा माया कुछ भी नहीं कर सकती है। जैसा भगवद गीता में कहा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय। तो इस प्रकार से हम विक्टोरियस होंगे, हम जीतेंगे, माया से जीतेंगे, जिस प्रकार से नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर भी जीते थे, हाँ युद्ध को जीते थे, और वो वैश्या जो आई थी वह भी एक प्रकार से जीत गई थी, वो भी विक्टोरियस थी। क्यों? क्योंकि उसके आगे का जीवन बहुत ही सुंदर बन गया जब एक भक्त से मिली और उसने हरि नाम को ग्रहण किया।
So like this, Tukaram Maharaj was free from Kamini, Kamvasna and also he was free from Kanchan, the gold or the wealth. One time the Shivaji Maharaj wanted to say, he did send some special gifts, some clothes and ornaments and Tukaram. Of course, when these Rajadoots or messengers of Shivaji had arrived at home of Tukaram Maharaj, Tukaram was out of station, he was not in. So his wife, Tukaram's wife, accepted all the gifts as he started wearing ornaments and putting clothes on and giving, take Mahadya, you take this, son and daughter, and they were doing a little makeup and very happy to see they had never experienced any expensive clothing and ornaments. No, but then Tukaram arrived and he said, no, what are you doing? He took all those, took away all those ornaments and clothes from children and from wife and returned. You take them. We don't need this kind of gift. No interest in this. This is that lostavat paradravishu. Lostavat paradravishu. Wealth or of others is like a dirt or a pebble, just a rock or no interest, no attempt to enjoy or exploit wealth like this. So this is Tukaram. Na dhanam, na dhanam, na janam, na sundarim, kavitam, va jagadisha kamae. So we are praying. But Tukaram's prayers were already heard, and he had no interest in dhanam, the wealth, and janam, the following, and nadhanam janam sundarim, the beautiful woman or opposite sex. He had no interest whatsoever. He was only interested, of course, interested in Krishna, Krishna's name, and that is wealth, right? That is a wealth. Golokera prema dhan. Said dhan. It's a prem dhan. So Tukaram had dhan, wealth. He was the wealthiest person in Dehu, or in the world, in fact. So he was not, had no interest in wealth or this, that. Jai Tukaram Maharaj ki.
कर हमने देख देखते हैं कि तुकाराम महाराज किस प्रकार से कामिनी से काम वासना से पूर्ण रूप से मुक्त थे और कंचन से भी संपत्ति इत्यादि से भी उनकी आसक्ति किसी प्रकार की नहीं थी। तो एक प्रकार एक दिन शिवाजी महाराज ने अपने कुछ राजदूतों के हाथ अपने कुछ उनके मैसेंजर्स थे उनको भेजा तुकाराम महाराज के पास बहुत सारे आभूषण वस्त्र आभूषण लेकर के नाना प्रकार के उन्होंने सुंदर द्रव्य भेजे तुकाराम महाराज के घर पर। और जब तुकाराम महाराज उस समय घर पर नहीं थे वे बाहर गांव गए हुए थे तो तुकाराम महाराज की पत्नी ने वे सारे वस्त्र आभूषण इत्यादि जो भी उपहार थे उनको ग्रहण किया और वे अपने को उससे अलंकृत करने लगे और अपने बच्चों को भी माधव तुम ये पहनो अपने बच्चों को भी वो इस प्रकार से वो आभूषण देने लगे और अपना सब मेकअप करने लगे बहुत अपने को संवारने लगे उन आभूषणों से वस्त्रों से और उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था इस प्रकार से। परंतु जब तुकाराम महाराज वापस आए तो उन्होंने कहा रे ये आप सब क्या कर रहे हो ये तुम कैसे कर सकते हो। उन्होंने ये कहकर के सारे वस्त्र आभूषण एकत्रित किए और उन्होंने शिवाजी महाराज के जो मैसेंजर्स या उनके जो राजदूत आए थे उनको वो वापस किए कि आप ये सब लेकर के जाओ हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम जैसा सुनते लॉस्ट वत पर द्रव्येषु कि दूसरे की जो संपत्ति है वो प्रकार से एक धूल के समान है पत्थर के समान समझते हैं जो भक्त लोग होते हैं। इस प्रकार से कुछ कोई भी संसारिक वस्तु या पदार्थ तुकाराम महाराज को आकर्षित नहीं कर सकता था। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामहे। जैसा कि हम ये प्रार्थना नित्य प्रति करते हैं तुकाराम महाराज की ये प्रार्थना भगवान ने जैसे स्वयं सुन ली थी और वे किसी भी प्रकार के धन से किसी प्रकार के व्यक्तियों से सुंदर स्त्रियों से या सुंदर कविताओं से किसी भी चीज से आकर्षित नहीं होते थे और उनकी कोई रुचि नहीं थी संसार की किसी भी वस्तु में। उनकी एकमात्र रुचि भगवान श्री कृष्ण में थी और जैसा कहते हैं गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो तुकाराम महाराज जो थे देहू गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे क्यों क्योंकि उनके पास साक्षात गोलोक का प्रेम धन था जो हरिनाम संकीर्तन था जिसमें वो नित्य प्रति हर समय डूबे रहते थे।
So, Shivaji Maharaj did want to give some wealth, some gift, some gold. So they thought he's not accepting this. Maybe he's thinking others will watch him. Haribo, watch him. And he doesn't want to others to see while he's receiving these valuable gifts and ornaments. So let us do this hidingly when there's no one around and there's wealth available or made available. Then certainly he will grab it. So this was a different strategy now of Shivaji Maharaj and his gift deliverers or messengers. So what they did was one early morning they went to Indrayani Ghat, and they knew that Tukaram Maharaj comes there during the dawn time when there's a less light, and to take bath. So they placed gold and ornaments and wealth like that, displayed it, and they thought for sure he will be by himself and no one is going to be able to see him taking it, the wealth, accepting. So he would go for it. But that did not happen. When Tukaram went and he saw some ornaments there, they're dazzling, shining, like they were golden ornaments. And Tukaram Maharaj left that place and went to another part of Ghat for taking snan that morning. And when others asked, "Oh, you're taking bath here today? Why not your ghat? Every morning you had been taking bath and such ghat. But today you are bathing here?" He said, "I think someone has a bath stool there." Like a stool also has little complexion, like a golden, like a gold. So so he had denounced, you know, he wanted to stay away from the stool, golden stool. And so So he was fully detached and had no hankering, no liking, no wanting. Wealth like this, because he was fully satisfied, chanting, "Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram." And it is possible to be fully satisfied by chanting. How do we know? We know from life of Tukaram. He was happy, fully satisfied. What was the cause of his satisfaction? Joy and the holy name of our Lord, Lord's name. Lord's pastimes, Lord's darshan, Lord's service unto the Lord. Yeah.
Shivaji Maharaj जो थे वो संतुष्ट नहीं हुए से और वे उनको कुछ उपहार देना ही चाहते थे तो शिवाजी महाराज ने ऐसा सोचा विचार किया कि हो सकता है तुकाराम महाराज सबके सामने गांव वालों के सामने उनके उपहार नहीं स्वीकार कर रहे हों तो उन्होंने एक उक्ति बनाई एक उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं ऐसा करूंगा कि कल सुबह भोर में जब बहुत कम प्रकाश होता है उस समय में जिस घाट से इंद्राणी नदी के तट पर जहां तुकाराम महाराज दैनिक स्नान के लिए आते हैं, मैं वहां पर कुछ उपहार आदि भेजूंगा उनके लिए, स्वर्ण अलंकरण इत्यादि भेजूंगा उनके लिए। तो उन्होंने ऐसा ही किया और जिस घाट पे तुकाराम महाराज स्नान करते थे वहां उन्होंने कई द्रव्य सोने सोने के आभूषण इत्यादि वस्त्र आभूषण इत्यादि वहां रखवा दिए और उनके मैसेंजर्स भी साथ में थे, उनके जो सैनिक थे वे भी साथ में थे। लेकिन जब तुकाराम महाराज वहां आ रहे थे उस दिन स्नान करने के लिए तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ चमक सा रहा है, तो उन्होंने उस घाट को छोड़कर दूसरे घाट पर चले गए स्नान करने के लिए। तो वहां जो घाट पर जो देहूत निवासी थे वो जो स्नान कर रहे थे उन्होंने पूछा कि आज क्या हो गया, आज आप अपने घाट पर स्नान नहीं कर रहे हो जहां आप रोज स्नान किया करते हो, आज आपने अपना घाट क्यों बदल दिया। तो तुकाराम महाराज ने कहा कि मुझे लगता है मेरे घाट पर किसी ने शौच आदि क्रिया करी है और वहां मल त्याग दिया है। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से, जैसा कि स्वर्ण में प्रभाव होती है या प्रकाश होता है, सोने में जो जो चमक होती है उसी प्रकार का जो वर्ण है वो मल का भी होता है। तो तुकाराम महाराज ने उसको मलवत त्याग दिया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं तुकाराम महाराज पूर्ण रूप से विरक्त थे, उनके अंदर कोई भी अभिलाषा नहीं थी, किसी प्रकार की संसारिक इच्छाएं नहीं थी, किसी प्रकार की लॉन्गिंग्स या कोई कामनाएं नहीं थी कि उन्हें संसार से कुछ चाहिए, वे पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। तो वो किस प्रकार से पूर्ण रूप से संतुष्ट थे, क्योंकि वह हमेशा हरि नाम कीर्तन किया करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या ये संभव है कि हम जप करने से पूर्ण संतुष्ट हो सकते हैं? तो ये तुकाराम महाराज के जीवन से हम ज्वलंत देख सकते हैं कि किस प्रकार से तुकाराम महाराज पूर्ण रूपेण संतुष्ट थे, उन्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी हरि नाम के अतिरिक्त।
हरे राम हरे राम हरे राम एव केवलम कलो नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिरन्यथा हरे राम एव केवलम। दिस वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम काइंडली लॉर्ड हैज लॉर्ड सेंट सच सेंट लाइक संत तुकाराम टू दिस वर्ल्ड। And the residents of Pune, Punya Nagari, are very fortunate. Tukaram's birthplace is just around the corner from here. So they should make Tukaram their hero and follow the example of Sant Tukaram Maharaj Ki. Yeah. Yesterday also we said that Tukaram Maharaj was a householder. He was not a sannyasi like us or like Radhanath Maharaj or Gopal Krishna Maharaj. He was a grahastha. A lot of our devotees are members of congregation. So for them, you could see how another grihastha, is a very special one, from their town, from Pune, Dehu, Pune, Dagas. It's not two towns, it's the same town. So study his life and teachings and follow in his footsteps and make the life perfect, especially by chanting the holy names of the Lord the way Tukaram did, chant with a great relish he chanted. Okay, time has come to stop. Okay, last translation.
हरि नाम एव केवलम। तो हम देखते हैं किस प्रकार से हरि नाम ही केवल जो है तुकाराम महाराज ने स्वीकार किया। तो ये हम समझ सकते हैं कि भगवान ने कृपावश तुकाराम महाराज जैसे संतों को हमारे बीच में भेजा तो आप पुण्य नगरी पुणे के जो निवासी हैं, जो इतने नजदीक रहते हो, आप सब बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपके समीप ही एक सुंदर तीर्थ स्थान है देहू, जो बहुत ही नजदीक है, और आप वहां जा सकते हो और तुकाराम महाराज को आप अपने जीवन में उतार सकते हो। आप इतने नजदीक रह रहे हो देहू विलेज गांव के। तो तुकाराम महाराज एक गृहस्थ थे, कल हमने यह भी सुना था और देखा कि तुकाराम महाराज गृहस्थ थे, वे कोई सन्यासी नहीं थे मेरे समान या राधानाथ स्वामी महाराज के समान या गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के समान, अपितु वे एक गृहस्थ थे। और हमारा जो कॉन्ग्रिगेशन है पुणे का या कहीं कहीं के भक्त जो है वो अधिकांश गृहस्थ ही है, तो उन गृहस्थों के लिए एक आदर्श गृहस्थ के रूप में संत तुकाराम महाराज ने अपना जीवन जिया। तो एक आदर्श गृहस्थ थे, वो तो गृहस्थ जो है तुकाराम महाराज के चरणों का अनुगमन करते हुए अपने गृहस्थ जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से जी सकते हैं और लीड कर सकते हैं हरि नाम की शरण लेकर के।
संत तुकाराम महाराज की, शिल प्रभुपाद की, राधा वृंदावन चंद्र की, गौर भक्त वृंद की जय। गौर में वनंदे
परम लोकनाथ महाराज की जय।
Guys.